बोलो माताएं, आज था योग पर। वाणी में जोहर कब आता है? जब योग बल हो और पढ़ाई का आधार पवित्रता, पवित्रता से योग, योग बल से वाणी में प्रभाव जोहर, उससे सेवाओं की सफलता। आज ऐसा लगता था मुरली सुनते हुए, आपको भी लगा होगा, कोई ऐसा बैठा है बाबा के पास आके सामने, तो जिसको देखकर बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो सब कुछ जानता है, नहीं जानता तो हम उसे भगवान नहीं मानेंगे। तो बहुत गुह्य बात आज बाबा कर रहे थे, कर्म और उसका फल, इसमें भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। जैसा कर्म वैसा फल, वो जाने या न जाने, हम तो जानते हैं ना। तब मुझे ख्याल आया कि वो उन बातों को नहीं जानता जिसे हम जानते हैं, वो उन्हें जानता है जिसे हम नहीं जानते थे आज तक, त्रिकालदर्शी। क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य मैं आपके सामने रख दूं, जो भी हम कर्म करते हैं, हमारा हर कर्म, डॉक्टर साहब वैसे तो मेडिकल की बात है, अब ये कहीं मेडिकल में तो नहीं होगा, जो भी कर्म हम करते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगें हमारे ब्रेन में प्रिंट होती रहती हैं, सेल्स में, कोशिकाओं में, और वो रिएक्ट करती हैं, वो रिएक्शन करेंगी, वो प्रतिक्रिया करेंगी, उसे कर्म का फल कहा जाएगा। इसमें बाबा को कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो जो जिसने किया वो प्रिंट हो गया, और उसका जो रिएक्शन होगा वो उसका फल। रिएक्शन के लिए मैं माताओं को सहज एक उदाहरण देता हूँ। बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक गेंद दीवार में मारी जाती है, दीवार को टकरा के कहाँ आती है, वापिस आ जाती है ना। जितने फोर्स से गेंद फेंकी गई उतने ही फोर्स से वो वापिस आएगी, इसको रिएक्शन कहते हैं। एक्शन हुआ गेंद को मारना, रिएक्शन हुआ उसका उतने फोर्स से वापिस आना। कोई कहे वापिस ना आए, वो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक नियम है। ऐसे ये कर्म का भी नियम है, जो कुछ हम अपने ब्रेन में प्रिंट कर देते हैं उसका रिएक्शन होता है वो फल। अब इसको कोई नहीं जान सकता, कौन से कर्म, पुण्य और पाप कहाँ प्रिंट हैं, और वो शरीर के किस हिस्से पर प्रभाव डाल रहे हैं जिससे बीमारियां होती हैं। लोग कह देते हैं ना, भाई पाप किया है तो ये बीमारी हो गई है, टांगों से किसी को मारा है तो टांग खराब हो गई है, कह देते हैं ना भक्ति में भी, हाथों से कष्ट दिया है तो हाथ खराब हुए, आंखों से पाप किए तो आंखों का कष्ट हो रहा है। तो वो उनसे संबंधित जो केंद्र हैं हमारे ब्रेन में, उसमें प्रिंट होते रहते हैं। तो हमें अपने अंदर योग का जोहर भरना है, यह है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात। एक हंसी का समाचार सुनाऊं, तो वो मुझे प्रश्न पूछा गया पत्र के द्वारा, दो बहनों ने लिखा एक साथ, हंसी मुझे बहुत हंसी आई और आपको भी हंसी आएगी, कि हमने तो सोचा था भगवान मिलेगा तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा, हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे, लेकिन भगवान मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, हम वैसे के वैसे ही हैं। कहा हमने सोचा था भगवान मिलेगा सब कुछ सरल हो जाएगा, उसने और काम दे दिए, सवेरे उठो ये करो ये ना करो, तो इसकी बात लिखी। कि जो एक हमारे पास रहा था हथियार था वो भी इस बार बाबा ने ले लिया, क्रोध। अब लोग हमें कमजोर समझ के कुछ भी बोलते हैं कि इन्होंने तो क्रोध दान कर दिया है। चौथी बात लिखी कि मुरली सुनने जाते हैं दुखी होकर आते हैं, कहते हैं तुमने बहुत पाप किए इसलिए तुम्हें दुख है ना, और वो पाप फिर रिपीट होंगे अगले कल्प में। हम तो फंस गए बाबा के पास आके, न छोड़ सकते न कुछ कर सकते। अभी थोड़े ही समय से वो ज्ञान में है, 1.5 और 2 साल से। अब उनके इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि बहनों के पास जाते हैं कि बहन जी बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो बहन जी कहती है अच्छी मूर्ति बनना है तो हथौड़े तो खाने पड़ेंगे ना, का और दुखी होके आते खाओ हथौड़े। तो कहाँ गड़बड़ है, सोचो कहाँ गड़बड़ है। तो लिखा कि हम तो बाबा के पास आके दुखी हो गए। भगवान से भी लोग नाराज होते हैं, उसकी भी शिकायत करते हैं कि बाबा हमारे लिए कुछ करता नहीं। मैंने कहा भाई मैं कोई बाबा से बड़ा तो नहीं हूं ना जिसके पास आप बाबा की शिकायत कर रहे हो कि मैं बाबा को सुधार दूंगा कि ऐसा न करो। अब बाबा की शिकायत किसे करनी चाहिए ये खुद सोच लो। बाबा भी ये सब सुन सुन के मुस्कुराता होगा ना, कि जब कोई भी मनुष्य दूसरे को सताता है तब वो बिल्कुल नहीं सोचता कि मुझे भी सताया जाएगा तो क्या होगा, और जब उसका फल सामने आता है कोई उसे सताता है तो वो भगवान को दोष देता है कि वो मदद नहीं करता। ये भी लिखा कि आप लोग कहते हो इस बार बाबा ने भी कहा बाप को बुलाओ, बाप बंधा हुआ है आने के लिए, हम तो बुला बुला के थक गए आता ही नहीं। बहुत हंसी आई उनका पत्र पढ़ के, किसके बुलावे पर बाबा आएगा। अब ये उत्तर बहने देंगी, आप किसी को निमंत्रण दें अपने घर में आने का, कोई तो तुरंत आ जाएगा कोई चलाएगा। हाँ ये सब बातें हैं ना, जिन्होंने बाबा को प्यार और अधिकार में बांधा हुआ है उनके बुलाते ही वो हाजिर हो जाता है। हाजिर उनके बुलावे से भी होता है जिन्होंने ये नहीं किया, पर उन्हें इसका फीलिंग नहीं होती, उन्हें समझ में नहीं आता, उन्हें दिखाई नहीं देता कि बाबा आ गया है, पर बाबा तो बुलावे पर आता है। तो हम अपने जीवन को सुखी करें या दुखी करें ये किसके हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। हमारा चिंतन हमें दुखी करता है, हमारा सुंदर चिंतन हमें सुखी कर देता है। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है वो सोच सोच कर दुखी है, वो उसका अपना सोचना। दूसरा व्यक्ति बीमार होता है वो शांत है, उसका अपना सोचना। तो हम सभी अब अपने अंदर योग का जवहर भरेंगे, अब हम चर्चा करेंगे योग की। किनका योग सहज हो सकता है, किस आत्मा का योग सरल हो सकता है, कौन अपने अंदर योग का बल महसूस करेंगे। पहली चीज, जिसका बाबा से समीप का नाता हो। तीन नाते हमारे उससे पहले जुड़ गए, कौन कौन से, बाप टीचर और सदगुरु। और भी कोई नाता जोड़ लें जो आपको पसंद हो, बाबा से अपनापन महसूस हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी मुरली में आया था 5-6 दिन पहले ही, बच्चे सोचो भगवान आकर तुम्हारा बाप बन गया है। नातों का नशा होता है ना, नातों की खुशी होती है, नातों का सुख होता है, नातों को निभाना भी होता है। केवल जोड़ लिया रिश्ता और निभाया नहीं तो उसका सुख नहीं होगा। तो हमें संबंधों का नशा हो जाए, हम संबंधों क्या सुख लेने लगे, टीचर का सुख। अब देखो टीचर का सुख, हमें वो रोज पढ़ाता है, सहज मार्ग दिखाता है, इसमें कोई कम सुख नहीं है। कोई राह भटक गया हो, जो राह कभी भटके हो उन्हें अनुभव है, राह भटकने से क्या होता है। 73 में हम लोग दिल्ली में थे, मेला किया था, तो मैं रात को जहाँ रहते थे वहां से पांडव भवन के लिए अपना सामान साइकिल पे रख के पीछे आ रहा था। रात थी, मैंने क्या सोचा, वो रास्ता लंबा है, ये गली वहीं जाती होगी, इससे निकल जाता हूँ। फिर चली गई लाइट, अब मैं उस गली से निकल तो आया, पर मुझे ये पता नहीं चला कि वो गली अब है कहाँ, मैं पहुंच कहाँ गया। अब 3 सरदार जा रहे थे शराब पी के। मैंने कहा सरदार जी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है न्यू रोहतक रोड पर, देखा है क्या? हाँ राजी, चलो चलो हमारे साथ। अब वो शराबी और मेरे साथ चल दिए, और मैं बिल्कुल पांडवन के पास ही था, उन्होंने आके कहा यह है आपका आश्रम, जाओ। तो मुझे कितना अच्छा लगा कि वहां अंधेरा था और मैं भटक जाता। बाबा ने हमें हर जगह का रास्ता दिखा दिया ना, क्या सोचने से तुम भटक रहे थे, क्या सोचो सब कुछ ठीक हो जाए। कहां कहां जा रहे थे और अब कहां जाओ सब कुछ ठीक हो जाए। तो हम बाबा की इस गाइडेंस को पाकर, ज्ञान को पाकर सुखी हुए हैं ना। हुई है माताएं सुखी, ये सोचती हैं चारों धाम का चक्कर तो लगाओ, इसमें क्या हर्जा है। एक बहन, मैं एक जगह गया था अभी, एक बहन अपनी पूरा ग्रुप लेकर अमरनाथ जा रही थी, मेरे से छुट्टी लेके गई। हम वहां पहुंचे, उन्होंने बस तैयार की हुई थी खड़ी कि कहाँ जा रहे हैं, अमरनाथ के लिए। मैंने कहा वहां तो आतंकवादियों का संघर्ष चल रहा है, कभी लौट के वापिस न आए। तो कुछ माताएं भक्ति वाली भी थी, कहा अच्छा है ना, अमरनाथ के पास जाके मर जाएंगे। मैंने कहा बच्चों का के बच्चे बच्चे वो जाने पीछे हमें क्या है। बाबा ने कितना सुख दिया है, यहीं से चारों धाम की यात्रा कर लो। एक हंसी का समाचार सुनाऊं पहले आपको, बहुत हंसी का है। हम थे नडियाद में, कहा यहाँ एक शिव का मंदिर है, उसका नाम है तड़केश्वर, नाम भी वंडरफुल। नाम कैसे कैसे रखते हैं एक और सुन लो, वही अतुल कंपनी है बहुत बड़ी, वहां के एक डायरेक्टर ब्रह्मा कुमार हैं, हमें दिखाने ले गए, कहा ये यहाँ का मंदिर है, इसका नाम है अतुलेश्वर। अतुल वालों ने अपने ईश्वर का मंदिर बना दिया, शिवलिंग है, शिव का मंदिर, नाम रख दिया अतुलेश्वर। अब ये है तड़केश्वर, उसकी विशेषता ये है कि उसके ऊपर छत नहीं है। बहुत सुंदर मंदिर है, बड़े कैंपस में है, छोटा सा नहीं, लेकिन छत नहीं। कहा बहुतों ने प्रयास किया बनाने की, नहीं बनी, टूटती है, बनी नहीं सकती। उसमें जो शिवलिंग है 6 फुट का होगा, लेटा हुआ शिवलिंग। तो हमें याद आया ये बाबा की वो यादगार है कि मैं तुम्हें राज देकर परम धाम में जाकर विश्राम करता हूँ, ये विश्राम कर रहा है इधर से बाबा। फिर हमने चक्कर लगाया, अब हंसी की बात तो अब सुनो, हमने चक्कर लगाया, 2-3 देवियां थी, हनुमान गणेश तो रखते ही हैं पहरेदार, 2-3 देवियां उनके नाम लिखे हुए थे। लास्ट में जब एक देवी के पास पहुंचे, देवी बहुत भव्य, उसके 4 हाथ लेकिन एक छुपा हुआ, 3 हाथ दिखाई दे रहे, एक हाथ में लंबा लंबा सा। मैंने कहा ये क्या है, कहा ये झाड़ू, इस हाथ में झाड़ू, इस हाथ में वो जो किचरा इकट्ठा करने के लिए सुपरी, वो एक हाथ में घड़ा, किसकी यादगार, समझ गए ना। हम इतने आनंदित हुए कि बाबा को देखो, जिसने उसके यज्ञ में झाड़ू पोछा भी लगाया उसकी पूजा हो रही है। पानी से धुलाई किया, घड़ा, झाड़ू लगाया, बाबा कितना रिटर्न देता है। हमने पहली बार देखा, उसमें नाम नहीं लिखा था कुछ भी, सब देवियों के नाम लिखे थे, उसका नाम नहीं था। तो यज्ञ सेवा का बहुत महत्व हो गया ना। जो सच्चे दिल से यज्ञ सेवा करते हैं उनकी भी पूजा होती है, और सच्चे दिल से यज्ञ सेवा करने वालों का योग भी सहज होता है, क्योंकि वे ये परमात्म प्यार की पहचान है ना। हमें बाबा से प्यार है इसलिए हम उसकी सेवा सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो ये प्यार हमें योगयुक्त होने में मदद करता है। तो हम बाबा से नाते रखें अपने, और इस अच्छे फीलिंग को बढ़ाएं, वो मेरा है, वो मेरा है। सोचो भगवान से नाता। माताएं जानती हैं उनकी लड़की की शादी किसी बड़े घर में हो जाए, उसी दिन से माताजी की विचार ढाल बदल जाती है। बदलती है या नहीं, जानती है ना माताएं। शादी भले ही अभी 6 मास के बाद होने वाली हो, हमारे लड़की का रिश्ता वहां हुआ है बड़े घर में, बहुत साहूकार है, लड़का बड़ा ऑफिसर है, इतना कमाता है, और हमारा रिश्ता किससे हुआ है, सोचो गहराई से, जो हमें राजाई देने आया है, जो हमें राजाई देकर ही जाएगा, हमारा खोया हुआ सब कुछ दिलाकर जाएगा, तो हमारा उससे अपनापन हो, और उससे हमें क्या क्या मिला है उसे हम याद करेंगे तो बहुत प्यार की फीलिंग हमें उससे होगी। देखो मैं बाहर जाता रहा, मैं ये सोचता था कि हम लोग ज्ञान सरोवर में मधुबन में रहते हैं, बाबा ने स्थूल सुख भी कितना दिया, शांतिवन में भी लाइट चली जाती है तुरंत जनरेटर की आ जाती है, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली में भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोड सेटिंग, बिजली कट, वो भी गर्मी में, कभी दोपहर के समय कभी रात के समय, गर्मी में कितना सुख दिया बाबा ने हमें, स्थान भी बहुत सुंदर चुन के दिया, और साधन कितने दिए सुखों के, लेकिन सुखों के साधन पाकर भी यदि हम सुखी न हुए तो ये हमारा अपना सोचना होगा ना। हम इन सब को याद करके बाबा के लिए अपने चित्त में प्यार भरें, क्या क्या दिया तुमने हमें, क्या क्या दिया। मुझे बाबा की एक बहुत अच्छी बात याद आई, मैं भट्टियों में बहुत सुनाता हूँ। देखो बाबा की मुरली ओम शांति भवन में चल रही थी, छोटे ग्रुप होते थे तब, मुश्किल से 1500 लोग आए होंगे। बाबा कह रहे थे अपने भाग्य को देखो, तुम परमात्म पालना में पल रहे हो, रोज सवेरे बाबा तुम्हें आकर जगाता है। जगाता है, होता है अनुभव, किसी किसी की तो खाट भी हिलती है, जगो। फिर बाबा ने कहा तुम्हें आकर पढ़ाते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाते हैं, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है आकर उसके आंसू पहुंचते हैं, फिर कहा कि अगर दुनिया वाले ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या, कौन है ये इतने प्यारे प्रभु के जिन्हें जगाने भी भगवान को आना पड़ता है, ये और किसी से पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाने भी भगवान को आना पड़ता है, ये और किसी के साथ सोएंगे नहीं, सुलाने भी उसको आना पड़ता है। तो बाबा ने कहा तुम उन्हें कहो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब सभी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, भगवान हमारे लिए खाली, अर्थात हमें निरंतर मदद देने को तैयार, तो हमें कैसे उसका संपूर्ण फायदा उठाना चाहिए। इस चिंतन से हमें बहुत बल मिलेगा, वो हमें मदद कर रहा है। हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को उस पे समर्पित कर सकते हैं। प्यार बढ़ेगा बहुत इससे, क्योंकि हमारे अपने अनुभव ही हमारा प्यार बढ़ाएंगे और उससे ही हमें बाबा के समीपता का अनुभव होगा। ये विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा योग बढ़ता है, सभी ने सुना है त्याग से तपस्या, तपस्या से सेवा। किस चीज का त्याग? त्याग की लिस्ट बनाए थोड़ी सी। किस चीज का त्याग? देह भान का त्याग। योगी के लिए पहली आवश्यकता ये, बिल्कुल आत्मिक स्मृतियां, देह भान तेजी से भूलता चले, इसका त्याग। दूसरा एक त्याग जो आत्मा को योगयुक्त नहीं होने देता, कर्म इंद्रियों के रसों का त्याग। इस त्याग पर विशेष ध्यान देना है। इसमें भी एक चीज, व्यर्थ की बातों का त्याग, क्योंकि जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। बातें मन को विचलित करती हैं, बातें बहुत सारी झूठी होती हैं। इसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा, उसने कहा ही नहीं, सुनाने वाले सुना रहे हैं। उसने तुम्हारे लिए ऐसा कहा तो सोचने वाले सोचते ही रहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। परंतु जो बातों से परे हैं, त्याग है ये बहुत बड़ा, बातों के रसों का त्याग। बातों में रहने की आदत, कॉन्फ्रेंस होती है ना बातों के लिए, माताएं करती हैं कॉन्फ्रेंस, करती होंगी घरों में, चार पांच माताएं बैठेंगी, सब इधर उधर का समाचार सुनाएंगी, जब उठ के चलेंगी बहुत हल्की होंगी, बड़ा मजा आया, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, कॉन्फ्रेंस का अगले दिन भी टाइम फिक्स। लेकिन इसको हल्कापन नहीं कहा जाता, संकल्प तो भारी हो सकते हैं ना, समा के समाप्त कर देना, इससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। भोजन कब शक्ति देता है? जब हजम हो जाए, समा जाए। ऐसे ही बातों को समा लेना, ज्ञान को समा लेना, इससे आत्मा में शक्तियां आती हैं। सभी इस पे विचार करेंगे, कर्म इंद्रियों का रस। इसमें एक विचारणीय बात यह है कि कभी कभी बहुत बड़ा त्याग करने के बाद आत्मा छोटे छोटे रसों में अटक जाती है। हमें सबको इस बारे में सावधान रहना है कि सभी का बड़ा त्याग है, चाहे आप घर में रहते हैं, त्याग सबका है बड़ा। सांसारिक इच्छाओं को छोड़ देना, पवित्र जीवन जीना, ये छोटा त्याग नहीं है, ये बहुत बड़ा त्याग है। ये गायन योग्य त्याग है, इसका ही पूजन होगा भक्ति में। बाबा ने दो बातें बता दी, जो बाबा को सहयोग देते हैं और जो पवित्रता अपनाते हैं उनका पूजन होता है, वो पूज्य बन जाते हैं। तो अपने त्याग को स्वयं महत्व दें, ध्यान दें सभी, अपने त्याग को स्वयं महत्व दें। त्याग करके यदि कोई अलबेले हो जाए तो त्याग का तेज नष्ट हो जाता है। याद रखना है सभी को, अपने त्याग को वैल्यू दें। हमने छोड़ा है तो सब कुछ प्राप्त करके ही रहेंगे, भगवान आया है तो उससे सब कुछ लेकर ही जाएंगे। तो ऐसा स्वयं से बात करके इन कर्मेंद्रियों के रसों को हल्का कर दें, फिर छोड़ दें। मैंने ये सीखा था यज्ञ के प्रारंभ में ही, एक बहुत अच्छी आत्मा अब तक है, वो बहुत बड़ा त्याग करके समर्पित हुई। उसके चार छोटे बच्चे थे, साहूकार घर था, सब छोड़ के समर्पित हुई, बाबा की सेवाओं में लगी। मैं उससे सीखता था, वो यज्ञ में भी रहती थी, सेंटर में भी आती थी, पार्टी लेके देखते थे उसे। तो त्याग करने के बाद भी उसके जीवन में रौनक नहीं आई थी, अब तक भी है। अब आप सब जानते ही नहीं उसे, समर्पित लोग भी नहीं जानते, हमारे मधुबन वाले भी नहीं जानते, क्योंकि त्याग के बाद आत्मा ने अच्छी तपस्या नहीं की। उसने फिर क्या सीख लिया था? पेंटिंग। सेंटर के पास ही पेंटिंग सिखाने वालों का केंद्र था, वहां जाके उसने पेंटिंग सीखा, फिर पेंटिंग करते रही। एक सेंटर में है वो, बस सेंटर में 5 ही स्टूडेंट हैं बहुत लंबे काल से, और वो पेंटिंग करती रहती है, सेवा नहीं। तो देखिए, उसका त्याग कभी बहुत जबरदस्त त्याग था। माताओं के लिए ऐसा त्याग करना कोई छोटी बात नहीं है। वो अगर अपने त्याग को खुद महत्व देती तो उसका जीवन बहुत डिवाइन बन जाता, बहुत दिव्य, बहुत तेजस्वी, भगवान के काम आ जाते ना बहुत ज्यादा। जिसके लिए बहुत बड़ा त्याग किया फिर उसके काम नहीं आ पाए ना, अपना जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बना, तो साधारण जीवन बन के रह गया। इतना अच्छा है कि उसने सोचा भाई अब तो यही जीवन जीना है, ठीक है, ओके, सहज भाव से अपना जीते रहो, तपस्या नहीं। तो हमारे इस त्याग की और हमारे इस अलौकिक जीवन की शोभा तपस्या में है, तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है। हम इन कर्मेंद्रियों के रसों से बचें, उसमें भी जीभ का रस, खाने पीने का रस, बोलने का रस, देखने का रस, सुनने का रस, इन रसों से हम बचें। मैंने एक अनुभव शायद यहाँ पीछे सुनाया था, मैं फिर सुना देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे लगा वो, सबको वो बात सीखनी भी है। दिल्ली में मैं गया था, मुझे लगता है उसके बाद यहाँ क्लास नहीं हुई थी, फिर मैं गुजरात चला गया था। तो भट्टी के बाद एक माता आई और उसने कहा कि मेरी लड़की का पति 6 दिन से सोया नहीं है, अब उसका हाल बहुत बिगड़ गया है, हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया है, आईसीयू होता है एक जिसमें खास पेशेंट को रखा जाता है, उसमें उसको रखा गया है। और उसने कहा सारे डॉक्टर इंजेक्शन देके, सारी सोने की दवाई देकर, और लास्ट में जो ऑपरेशन के लिए नशे का इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो भी दे दिया, सब फेल, उसको नींद नहीं आई। कहा अब सब चिंतित हैं क्या होगा, आंखें उसकी बड़ी हो गई हैं, सिर तो जैसे फटा जा रहा है, क्या करें। ये तो परेशान थे कि पता नहीं क्या हो जाए, नींद ना आना हम जानते हैं, एक रात को ना आए तो हाल कितना बिगड़ जाता है, 6 दिन लगातार हो गए उसको। तो मैंने उसको 2 सिंपल तरीके बताए, आप सब भी प्रयोग करें, ये बहुत अच्छी चीज है। हमारी प्योरिटी में सबसे बड़ी शक्ति है संसार की, प्रकृति की असली शक्ति पवित्रता होती है। तो ये जो प्रकृति है, पानी, हवा, सब्जी, भोजन, फल, ये हमारे वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करता है। तो मैंने उसे बताया तुम हॉस्पिटल जाओ, अभी रात शाम का समय था, भट्टी पूरी हो गई थी 8:30 बजे, और तुम उसे पानी देना। कैसे देना? एक गिलास में पानी लेना और उसको दृष्टि देते हुए 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और उसको पिलाना और कहना कि इसको पीने से तुम सो जाओगे। दूसरा, अचानक मुझे ख्याल आया, ये सब बात आधे मिनट में ही पूरी हुई, मैंने कहा तुम हाथ ऐसे मलना और 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और उसके सिर के पीछे बैठ कर यहाँ हाथ रख देना सिर पर और उसे कहना सो जाओ, जैसे बच्चे को कहती है ना माताएं सो जाओ। अगले दिन वो माता सवेरे आई और कहा वो गहरी नींद सोया है, कितना अच्छा रहा। इतने खुश हुए वो सारा परिवार, फिर वो मिलने आए तो वो नर्स थी वहां, उसने देखा था, वो पूछ रहे उस माता से तुमने क्या दवाई दी थी रात गिलास में। तो देखो साइंस पर योग शक्ति साइलेंस की विजय। ऐसे दूसरा अनुभव, जयपुर के तीन कुमार हैं, छोटे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, भाई हैं। एक को बुखार चढ़ रहा तेज, तीन दिन हो गए और कल जैसे एग्जाम है, परीक्षा है। अब उसको बहुत चिंता भी हो रही सबको कि भाई एग्जाम छूटेगा इंजीनियरिंग का। तो मेरे को फोन किया ट्रेन में ही, तो मैंने उन्हें उसके दूसरे भाई को बता दिया कि आप गिलास लेकर पानी लेकर 7 बार संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ दृष्टि देकर, और इसको 5 बार पिला दो ऐसे करके सारे दिन में। शाम को उनका फोन आया, बिल्कुल ठीक हो गया, अगले दिन एग्जाम हुआ फर्स्ट क्लास, उसका थकान और कमजोरी भी नहीं रही। तो ये जो बाबा रोज हमें कहता है पवित्रता आधार है, इस पे हम बहुत ध्यान देंगे, हमारे पवित्र संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। चार्ज करते हैं हम वातावरण को, हम प्रकृति को चार्ज करते हैं, तो हम अपने योग बल को बहुत बढ़ाएंगे। अलबेलेपन में, व्यर्थ बातों में रुचि रखते हुए हम इस अनमोल समय को बिताए नहीं। सेवाधारी भाई बहने भी अब सेवा में आए हैं, बहुत सेवा तो नहीं है, बहुत अच्छा ध्यान देंगे। बाबा का कमरा है, वहीं किचन में भी है ऊपर, जब भी मौका मिले बैठो, एकांत में बैठो, योग अभ्यास करो, कुछ अच्छा चिंतन करो। मैं आप सबको वो भी याद दिला दूं, बाबा हम सबको काम देकर गए हैं, कौन हो तुम, पूर्वज। सब हम एक दूसरे को याद दिलाया करें, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सभी धर्मों की आत्माओं को सकाश देनी है। कहाँ रिजल्ट लेंगे ना बाबा जब पहली बार आएंगे, तो हम अपने योग बल को बढ़ाएं, क्योंकि हमारी सकाश दूर दूर तक तभी जाएगी। अगर हमारे पास योग बल नहीं होगा तो हमारे वाइब्रेशंस दूर दूर तक नहीं जाएंगे, नजदीक तक असर करेंगे या थोड़ा असर करेंगे, पूरा फायदा आत्माओं को नहीं होगा। तो रोज मैं आपको याद दिला दूं, उसमें बाबा का बहुत अच्छा महावाक्य है, चलते फिरते यदि तुम्हें नशा रहे मैं पूर्वज हूँ, तो तुमसे सबको सकाश मिलती रहेगी। बहुत सुंदर बात है ये, चलते फिरते भी अगर तुम चलते फिरते सकाश दोगे तो तुम्हारा जीवन निर्विघ्न बन जाएगा। ये दोनों महावाक्य बहुत काम के हैं हम सबके, क्योंकि इससे पुण्य बहुत जमा होता है। बाबा ने कभी अव्यक्त में ऐसे भी कहा है कि तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। पुण्य तुम करोगे, बल मिलेगा करोड़ों करोड़ों को, इसलिए तुम्हें उसका फल भी पदम गुना मिल जाता है। हमारे पुण्य का इतना ज्यादा प्रभाव है, तो हम जैसे आज बाबा कह रहे थे पाप से अपने को बचाएं, पुण्य का खाता बढ़ाते चले। बहुत सारे पाप तो ब्राह्मणों से छूट ही जाते हैं, अब छोटे छोटे पाप ना हो, जैसे किसी को सताया, किसी को दुख दे दिया, कटु वचन बोल दिए, किसी को डिस्टर्ब कर दिया, इन छोटे छोटे पापों से भी हम बचें, ताकि सबकी दुआएं हमें मिलती रहें योग युक्त होने के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि हम जीवन सहज भाव से जीते हैं। इंग्लिश के बहुत अच्छे शब्द हैं जो बाबा बोलते आए हैं मुरलियों में, नो क्वेश्चन। समझते हैं ना माताएं, क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं, प्रश्न नहीं, नो कंप्लेंट, शिकायतें नहीं। शिकायतें बहुत होती है ना, कोई स्टूडेंट टीचर्स की शिकायत कर रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट्स की कर रहे हैं, माताएं दूसरों की घरों में कर रही हैं तो भाई भाई की कर रहा है, बहनें बहनों की कर रही हैं। शिकायतें नहीं, जबरदस्ती नहीं या ज्ञान युक्त होके नहीं। हम ऐसे ही सोचें शिकायत नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। हमारे पास इसके लिए ज्ञान की परफेक्ट रोशनी चाहिए। क्यों शिकायत नहीं? क्योंकि जो कुछ इस संसार के खेल में हो रहा है वही सत्य है। स्वीकार करें जो कुछ भी हो रहा है वो संपूर्ण सत्य, अब जो होगा वो भी सत्य। एक तो है बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत अच्छा होगा, लेकिन कभी कभी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करती ना, विनाश होगा बहुत अच्छा होगा, स्वीकार नहीं करती ना आत्मा। क्योंकि जब कष्ट होगा तो ये फीलिंग नहीं होगी कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना है, वही खेल है। क्योंकि ये धरती देवताओं के लिए खाली होनी है, तो ऐसा चिंतन हम रखेंगे तो आने वाले समय में जो कुछ होगा उसे सहज भाव से देखेंगे। हमारे ज्ञानामृत में भी इस बार एक विनाश के बारे में लेख छपा है, उसमें एक बहुत सूक्ष्म बात उसने लिख दी है कि सूरज की किरणों से, मुझे शब्द पूरा याद है या नहीं, प्लाज्मा आ रहा है, वो पढ़ लेंगे फिर से, मेरे पास भी है। उससे जब उसकी बढ़ जाएगी मात्रा तो इस धरती से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स दोनों फेल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी भी फेल, बिजली भी फेल, और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने साधन है ना, टीवी भी, टेलीफोन भी, इंटरनेट भी, और सारा आईटी तो इसी का है ना, कम्युनिकेशन, सारी दुनिया आजकल तो एटम बम भी कंप्यूटराइज्ड ही है ना, सारे मिसाइल्स कंप्यूटराइज्ड हैं, कंप्यूटर से चलेंगे वो, तो वो काम करना बंद कर देंगे। हो सकता है वो ऐसे समय पे हो जाए कि जब विश्व युद्ध हो रहा हो और ये सब सिस्टम फेल हो जाए, तो उनके मिसाइल्स काम ही न करें, जो छूट गए छूट गए, एटम बम जितना विनाश उनसे होना था वो हो गया। तो ये बात बहुत सीरियस है इस सृष्टि के लिए। ऐसे सब खेल देखो, हमारे भारत के लोगों को तो एक नेचर ही ऐसी है कि जो नहीं है थोड़े दिन में उसमें ही एडजस्ट कर लेते हैं। बिजली नहीं है दो चार दिन तकलीफ होगी, फिर देखेंगे भाई है ही नहीं तो अपने हाथ के पंखे फिर निकालो, बनाने वाले कारीगर भी गांव गांव में शुरू हो जाएंगे, दीपक जलने लगेंगे फिर से घरों में, लकड़ियों पर कोयलों पर फिर भोजन बनने लगेगा, सब इलेक्ट्रिकल साधन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही बात अमेरिका में हो गई तो एक मास उनके लिए एक युग के बराबर हो जाएगा, वहां का तो जीवन ही समाप्त, कुछ भी नहीं, दुकान भी कंप्यूटर से हिसाब किताब हो रहा है, उनको आता नहीं हाथ से करना। हंसी का समाचार एक गुजराती ने सुनाया था ना कि उसने $6 का सामान लिया और 10 का नोट दिया, उसने 6 वापिस कर दिए, इसने कहा भाई 4 बचते हैं, 6 का सामान लिया 4 बचते हैं, वो कहता नहीं कंप्यूटर दिखा रहा ना 6 बचे, 6 ही दिए उसने, उसका हिसाब खराब हो जाएगा ना। तो वहां तो ऐसा है खेल। तो हम सभी अपने अंदर योग का बल बढ़ाएंगे, सहज जीवन जिएंगे। एक बहुत अच्छा अभ्यास मैं आपके सामने रख देता हूँ, बहुत सुंदर है और इसी को अब हम योग के समय करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा ऊपर है, उसकी रंग बिरंगी किरणें पड़ रही हैं। अब इसको लंबा समय करने का तरीका ये अपनाएंगे, कि ये संकल्प हम रिपीट करेंगे। पहले 10 सेकंड बाबा से किरणें ली, फिर रिपीट करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, बाबा की रंग बिरंगी किरणें आ रही हैं। फिर आधा मिनट तक किरणें ली, फिर संकल्प रिपीट करेंगे, 1 मिनट तक किरणें ली। ऐसे संकल्प को रिपीट करते हुए योग करने से लंबा समय स्थिरता हो जाती है। तो सभी बहुत अच्छी तरह आने वाले समय के लिए अपनी वाणी में योग का जोहर भरेंगे तो क्या होगा, कोई दुखी हमारे सामने आएगा ना, हम उसे कहेंगे सुखी हो जाओ, इतना प्रभाव होगा, सुखी होने लगेंगे लोग।